निबंध तीन, मुक्तिबोध अंधेरे में गहरी छानबीन। प्रभाकर श्रोत्रिय। नई कविता, और देखा जाए तो कविता मात्र, को लेकर मुक्तिबोध ने एक सवाल उठाया था कि क्या कविता को तीव्र संवेदनात्मक प्रतिक्रिया या क्षण विक्षण की प्रतिक्रिया होना चाहिए अथवा उसमें टोटल पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। टोटल पर्सनैलिटी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कथ्य अपने पूरे तत्वों को मूर्तिमान करते हुए पाठक के हृदय में अपने प्रभाव को घनीभूत कर दे। अब जरा यह प्रश्न हम खुद मुक्तिबोध की कविता से ही पूछें। जब लंबे और जटिल अनुभवों से गुजरते हुए उसे समीक्षित और विवेचित करते हुए मुक्तिबोध शिल्पी जैसे धैर्य और तन्मय बेचैनी से अपनी कविता का प्रदीर्घ व्यक्तित्व तो उकेरते हैं, तो उनका अभिप्राय सही परिप्रेक्ष्य में अपने समय को, उसके अंतर्भूत संवेदनों को परिभाषित करते हुए कथ्य को पाठक के हृदय में घनीभूत कर देना होता है। महज आत्माभिव्यक्ति या क्षण की प्रतिक्रिया को उनके यहाँ काव्यत्व की गरिमा कभी नहीं मिलती। कविता को संपूर्ण व्यक्तित्व स्वयं कवि के व्यक्तित्व सन्निवेश से मिलता है, जो मुक्तिबोध के लिए जीवन व्यापार में अपने आत्म के विनिमज्जन का ही दूसरा नाम है। यह विनिमज्जन प्रवाह में बहने की तरह हो, यह कतई जरूरी नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध के काव्य में यह द्वंद्व जीवन व्यापार के अंतर्विरोधों के बीच संघर्ष के माध्यम से ही हुआ है। इसे परखने के लिए हम उनके कुछ कविताएं ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी अकेली कविता में संपूर्ण व्यक्तित्व की धारणा को पाया जा सकता है तो है अंधेरे में। इतना वैविध्य और अनविति, संघर्ष और प्राण शक्ति, कथ्य और शिल्प की संपूर्णता शायद ही उनकी दूसरी कविता में एकत्र मिल सके। मसलन पहली चीज तो यही है कि मुक्तिबोध मनुष्य की प्राण शक्ति को उद्दीप्त कर उसे वैयक्तिक और सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो अनिवार्यतः आस्थामूलक है। अंधेरे में कविता में एक ओर यदि गुह काले और भयावह संसार पर उनकी दृष्टि है, तो दूसरी ओर भूमि के भीतर भीतर बिछे बिजली के जीवित तारों की जगह तरह गुप्त जनक्रांति की विद्युत तरंगों की खोज में भी वे सन्नद्ध हैं। इसलिए काव्य नायक, जो स्वयं कवि है, भूगर्भ के अंधेरे में खोज यात्रा करता है, जहां आखिरकार उसे मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न बिखरे मिलते हैं। इस माने में यह अंधेरे लोक की नकारात्मक यात्रा नहीं है, एक विधायक और आस्थामय उपलब्धि यात्रा है। मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि केवल इस सक्रिय संधान की दृष्टि से भी मुक्तिबोध नई कविता के अन्यतम कवि हैं, जिस दौर में क्षण या तीव्र मानसिक संघात की प्रतिक्रिया ने कविता का दर्जा हासिल कर लिया था। मुक्तिबोध स्वदेश्य लंबी और प्रगतिशील आस्था से संपन्न कविताएं लिख रहे थे, शायद फैशन से कटने का खतरा मोल ले रहे थे। द्वंद्व की शक्ति को उन्होंने इस कदर पहचान लिया था कि वे साम्यवाद की भाषा में, प्रतिक्रियावादियों या साहित्य की भाषा में, कलावादियों और अति यथार्थवादियों के शिल्प का कविता में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी कविता में निहित फैंटेसी और श्यामल रंग को देखकर कुछ जड़ीभूत धारणाओं वाले समीक्षक उनमें प्रतिक्रियावाद की आशंका करने लगते हैं। बिना उसके प्रयोजन और अंतर्निहित आशय को समझे बूझे मैं समझता हूँ कि अंतर्विरोध और द्वंद्व को अपने व्यक्तित्व में पूरी तरह सन्निविष्ट किए बिना कविता में द्वंद्व की वैसी समग्र अवधारणा हो ही नहीं सकती जैसी मुक्तिबोध में है। कलावादियों और अति यथार्थवादियों की फैंटेसी, जो कल्पना की उड़ान भरने या आदर्श के दिव्य लोक रचने तथा दमित वासना के अवचेतन बिंब उपस्थित करने के काम आती है, मुक्तिबोध के यहाँ बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समाज को निर्वस्त्र करने या वास्तविकता का साक्षात्कार करने का सृजनात्मक औजार बन गई है। मुक्तिबोध ने शमशेर की काव्य प्रक्रिया के बारे में जो प्रश्न उठाया है, वही हम स्वयं उनकी काव्य प्रक्रिया के बारे में उठाएं कि काव्य व्यक्तित्व के भीतर वह कौन सी सक्रिय आवश्यकता होती है जो अपने अभिव्यक्ति शिल्प का विकास करती है। तो हमें लगेगा कि मुक्तिबोध ने यह महसूस कर लिया था कि बाह्य जगत इतना गोचर स्थूल नहीं है कि उसे सतही प्रेक्षण के जरिए जाना जा सके। उसमें इतनी जटिल गुह्यता और अंतर्विरोध है कि उसे अंतर्दृष्टि से ही जाना जा सकता है। वस्तुतः अंतः अन्वेषण की बुनियादी और सक्रिय आवश्यकता ने ही मुक्ति के फैंटेसी शिल्प का बोध निर्माण किया है। मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इतिहास, समाज, अर्थरचना और राजनीति के विश्लेषण से पाया है, वही मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष के अंतः प्रयत्नों से कविता में उपलब्ध किया है। महज दृश्य यथार्थ के रेजिमेंटेशन में बंधने से उन्होंने पिछले दौर के प्रगतिवादियों के विरुद्ध इनकार कर दिया। अवचेतन की ऊहापोह का उपयोग करते हुए उन्होंने व्यवस्था, प्रतिष्ठान और वस्तु जगत को निरावृत करने की कोशिश की है। इस अंतर तत्व को पहचान कर ही मुक्तिबोध के शिल्प को परिभाषित करने की जरूरत है। हॉवर्ड फास्ट ने अपनी पुस्तक लिटरेचर एंड सोसाइटी में इस बारे में बातचीत की है कि यथार्थ की कसौटी क्या होगी, लेखकों की विशिष्ट शैली या वस्तुनिष्ठ सत्य का अन्वेषण। संभव है कोई कृति ऊपर से यथार्थवादी दिख पड़े, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका यथार्थ से रिश्ता हो ही। इससे उल्टी बात भी कही जा सकती है, यानी वस्तुनिष्ठ सत्य का अन्वेषण ही रचना की कसौटी होगी। यही बात प्रकारांतर से मुक्तिबोध ने कामायनी की विवेचना करते हुए कही है कि यथार्थवादी शिल्प और यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर है। यह बहुत संभव है कि यथार्थवादी शिल्प के विपरीत जो भाववादी शिल्प है, उस शिल्प के अंतर्गत जीवन को समझने की दृष्टि यथार्थवादी रही हो। यानी हमारा विश्लेषण शिल्प के वास्तविक इरादे को लेकर ही होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि हम अंधेरे में की फैंटेसी पर विचार करें तो उसमें बहुस्तरीय सक्रियता पाएंगे। एक स्तर पर फैंटेसी अंतर्दर्शन की प्रक्रिया है जिसके सम्मुख साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्यमय गूढ़ और गुह्य तिलिस्म खुल जाते हैं। इस तरह अवचेतन का शिल्प सत्य दर्शन का शिल्प बन जाता है। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। दूसरे स्तर पर फैंटेसी दिक्काल को अन्वित करती है और दृश्यमान असंबद्धता को किसी अंतर्हित ज्ञानात्मक संवेदनात्मक ज्ञान के द्वारा सूत्रबद्ध करती है। जग दर्शन की भूमिका में ही काव्य नायक को सितारों के बीच टॉल्स्टॉय दिखाई देते हैं, जो उसके अनलिखे उपन्यास के केंद्रीय संवेदन की तरह हैं, दबी हाय हाय नुमा है। इसके तुरंत बाद वह बहुचर्चित प्रोसेशन दिखाई देता है जिसमें उस शहर की मृतात्माएं जुलूस की शक्ल में चली आ रही हैं। कहाँ टॉल्स्टॉय और कहाँ उस शहर की मृतात्माएं। इन दोनों दृश्यों के बीच ऊपर से कोई तारतम्य नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर उतरने पर उनका गहरा संबंध प्रकट होता है। मुक्तिबोध के एक निबंध में टॉल्स्टॉय का जिक्र यूं आया है, टॉल्स्टॉय की नैतिक भावना की मूल पीड़ा जिन परिस्थितियों में बद्ध और ग्रस्त जिस टाइप में हो सकती हैं, वह परिस्थिति और व्यक्तित्व का वह टाइप आज भी हमारे भारतीय जीवन में जैसा जिया जाता है पाया जाता है। इस अर्थ में टॉल्स्टॉय को पहचानने पर क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आगे आने वाली मृतात्माएँ उनकी मूल पीड़ा के ही प्रतीक हैं। यह भी तथ्य है कि बुर्जुआ काल के विरुद्ध सामाजिक दृष्टि संपन्न साहित्य का प्रारंभ यूरोप में टॉल्स्टॉय से ही हुआ है। इस माने में टॉल्स्टॉय एक ऐसी मर्मभेदी दृष्टि बनकर यहाँ उपस्थित हैं जो प्रतिष्ठित बड़े नामों के निगेटिव्स देख लेते हैं। एक अन्य स्तर पर फैंटेसी जनक्रांति की आद्योपंत प्रक्रिया, उसमें बुद्धिजीवियों, कलाकारों और चिंतकों की निष्क्रिय और पलायक भूमिका का मर्म खोलती है। मुक्तिबोध साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों की जनक्रांति के सिलसिले में अकर्मण्यता से बराबर चिंतित रहे हैं। एक साहित्यिक की डायरी में उन्होंने गरीबों की हालत का बयान करते हुए हिंदी में और भारतीय जीवन में किसी संगठित हलचल के अभाव में के प्रति गहरा दुख प्रकट किया है। अंधेरे में एक कलाकार का रूपायन है जो आतंकवादियों के हाथों मारा जाता है। आखिर क्यों? वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्यक्षमता में वंचित व्यक्ति चलाता था अपना असंग व्यक्तित्व। क्रांति में सक्रिय भूमिका के अभाव में प्रतिक्रियावादियों के हाथों कलाकार का ही हश्र होना है। अन्यत्र जनक्रांति के क्षणों में फिर उन्होंने इनकी भूमिका पर टिप्पणी की है, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है। इसके विपरीत काव्य नायक, जो स्वयं भी कलाकारों और बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, का व्यक्तित्व तीव्र गत्यात्मक बेचैनी से भरा है। वह जो इतना बेतहाशा भागता और मोड़ पर घूमता जाता है, वस्तुतः गत्यात्मक परिवर्तन के द्वारा बेहतर संसार, बेहतर स्थितियों और सक्रियताओं की बेचैन तलाश करता है। इस पूरी यात्रा में जगत कहीं नहीं छूटता, बल्कि सार्थक ढंग से जोड़ता जाता है। इसलिए यद्यपि शुरू में सब कुछ देखते हुए भी काव्य नायक सामाजिक सक्रियता की दृष्टि से निस्सहाय और भीरू बना रहता है, लेकिन जनयूथ में आत्म को विसर्जित करने की निरंतर बेचैनी उसे क्रांति के जुलूस में शामिल करवाती है और एक कलाकार की ईमानदार भूमिका का निर्वाह करता है। यही प्रसंगवश मुक्तिबोध के काव्य में अक्सर फैले काले और अंधेरे रंगों का राज भी जान लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल खुद तकनीकी अर्थ में नहीं किया है, बल्कि सामाजिक वैषम्य, और उसकी प्रतिक्रिया में संगठित प्रयत्न के अभाव में उपजी संवेदित मन की असहाय पीड़ा ने स्वयमेव उनके काव्य में श्यामल और बोझिल रंगों का रूप ले लिया है। यद्यपि इस रंग में निहित आशय को तो उन्होंने नहीं बदला, लेकिन उसकी अराजक उपस्थिति को वर्जित और संयमित कर दिया है। काला रंग तो है, मगर उसे चीर कर एक उजली प्रभा रेखा बराबर उभरती रहती है और अंततः कवि के अपने रचना संसार में काले रंग का ध्वंस हो जाता है। अनुभूत अंधकार को आत्मग्रस्तता से निकालकर सामाजिक आशामयी चेतना में रूपांतरित कर पाना उसकी अदम्य प्राण शक्ति और आस्था का प्रतीक है। फैंटेसी के विभिन्न स्तरों की चर्चा के बाद अब हम फिर से लौटते हैं अंधेरे में कि फैंटेसी का उपयोग कवि ने काव्य की रचना प्रक्रिया और उसकी सक्रिय वस्तुनिष्ठ भूमिका के अभिव्यक्ति के रूप में किया है। इस माने में सारी कविता परम अभिव्यक्ति की खोज है। यह परम अभिव्यक्ति कोई सिद्धों, संतों या रहस्यवादियों की नहीं है। मुक्तिबोध ने काव्य की सार्थकता के लिए परम शब्द को प्रचलित उदात्तीकरण के वजन पर जीवन के अंतर्गत जीवन से जूझने और उसमें प्रसरित होने के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस माने में रहस्यवादी या आदर्शवादी ऊंचाई से भिन्न काव्य की संपूर्णता को एक प्रगतिवादी भाषा दी है। उनकी परम अभिव्यक्ति का अर्थ है सत चित वेदना की सक्रिय और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यह परम अभिव्यक्ति मनस्तत्व में कैसे तरंगायित, बिंबित और अंततः प्रतिफलित होती है, किन आंतर और बाह्य स्तरों पर टकराती है, झलमिलाती है और संपूर्ण जीवन जगत में अंतः प्रविष्ट होकर सार्थक होती है, यह सब इस कविता के दौरान निरंतर अनुभव किया जा सकता है। परम अभिव्यक्ति पहले ध्वनि और फिर चाक्षुष बिंबों में उपस्थित या तरंगित होती है। दूसरे शब्दों में अंतर तत्व और वस्तु तत्व ही तरंगित होकर मानसिक दृष्टि के सम्मुख उपस्थित होते हैं। यही बोध पक्ष या ज्ञान वृत्ति सक्रिय होती है, जिसका प्रतीक वह मशाल है जो मन के गुहाद्वार में परम अभिव्यक्ति को आलोकित करती है। मन चक्षु के सम्मुख अंतस्तत्व की अभिव्यक्ति का यह प्रथम क्षण है। दूसरा क्षण मुक्तिबोध के अनुसार सक्रियता और तटस्थता का मिला जुला क्षण होता है। एक ओर तो मन अंतस्तत्व या वस्तु तत्व में निमग्न होता है, लेकिन दूसरी ओर ज्ञान वृत्ति उसे तटस्थ बनाती है, जो मन में एक खास किस्म की समझदारी विकसित करती है। जब अभिव्यक्ति सांकल बजाती है, तब उससे मिलने जुलने की उत्सुकता के बावजूद उसे देखकर प्यार उमड़ता है अनायास। आत्मव्यक्तित्व उससे बचने या निरपेक्ष होने की कोशिश करता है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बचने दो सांकल। यह कर्म वृत्ति और बाहरी पर्यालोचन की दोहरी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जब इस विकल्प का अंत होता है तो काव्य नायक दरवाजा खोलकर बाहरी जगत का पर्यालोचन करता है। नतीजा यह होता है कि कल्पना उद्दीप्त होकर उस संवेदित अंतस्तत्व को अपने समरूप अनुभवों और जीवन मूल्यों से संश्लेषित करती है और एक संश्लिष्ट जीवन चित्रशाला उपस्थित कर देती है। इसे मुक्तिबोध के शब्दों में कला का दूसरा क्षण कहा जाना चाहिए। यही वह क्षण होता है जिसमें कलाकार का वेदनात्मक और संवेदनात्मक अभिप्राय किसी व्यापक मार्मिक जीवन महत्व से न्यस्त हो जाता है। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। यही कारण है कि आत्म तत्व इतना महत्वपूर्ण मालूम होता है कि उसके अभिव्यक्ति के लिए कलाकार तड़प उठता है। इसी छटपटाहट को मुक्तिबोध कला का तीसरा सबसे लंबे संघर्ष का क्षण कहते हैं। दूसरे क्षण की संश्लिष्ट जीवन चित्रशाला खुल पड़ती है। यही चित्रशाला अंधेरे में कविता है। दरअसल पूरी कविता ही अभिव्यक्ति की छटपटाहट है। जब यह संघर्ष, यह छटपटाहट खत्म हो जाती है तो कलाकृति पूर्णतः सामने आ जाती है। महाप्राण कवियों की छटपटाहट बहुत दीर्घ होती है। मुक्तिबोध की कविता का अंतर खींचते जाना इस बेचैनी की सुदीर्घता ही है। अंधेरे में कि स्वप्न कथा जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं सुबह हो जाती है। यह एक तरह से संघर्ष की समाप्ति और संतोष का प्रतीक है, जिसकी अभिव्यक्ति अंतिम पंक्तियों में हुई है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव यहाँ पूर्णतः शमित हो जाता है। मुक्तिबोध ने कविता को आत्मसंघर्ष कहा है। अंधेरे में कविता इसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करती है। यह नाटकीय द्वंद्व मुख्यतः आलोचक मन और आलोचित आत्मव्यक्तित्व के बीच घटित होता है। यदि हम इसकी वैचारिक बुनियाद तक पहुँचना चाहें तो यह बुर्जवा साहित्य, जो मूलतः आत्मग्रस्त अवसाद और समाज से पलायन का प्रतीक है, कि मार्क्सवादी आलोचना है। दूसरे शब्दों में यह प्रतिगामी व्यक्तित्ववाद का सामाजिक यथार्थ से द्वंद्व है। काव्य नायक अंधेरे कमरे में बैठा है जो वैयक्तिक चेतनावृत्त है। उसका मन एक खो है जिसमें अंतःप्रज्ञा की मशाल में वह परम अभिव्यक्ति के रक्तालोक स्नात व्यक्तित्व का साक्षात्कार करता है। यह वस्तुतः अपनी ही अस्मिता का प्रत्यभिज्ञान है, जब रूप और प्रतिरूप या बिंब और प्रतिबिंब जो सारतः एक हैं आमने सामने खड़े होते हैं तो एक नाट्य स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद यह नाट्य स्थिति नाटकीय द्वंद्व में बदल जाती है, क्योंकि रूप और प्रतिरूप सारतः ऐक्य होने के बावजूद क्रियागत वैषम्य है। प्रतिरूप रूप को बाहर निकलने का आह्वान करता है और रूप उसके प्रति स्नेह और आकर्षण का अनुभव करते हुए भी उससे कतराता भयग्रस्त होकर छिपता है। इसके बाद यह द्वंद्व दर्शक और दृश्य में बदल जाता है, क्योंकि दृश्य निरंतर सक्रिय और त्वरित गतिशील है, इसलिए दर्शक भी अपनी टूटी फूटी गति लिए उससे जूझता है। इस केंद्रीय नाट्य का अंतिम पहलू है प्रतिरूप की पहचान। रूप ने उसे व्यक्ति के रूप में पहचानना चाहा था, लेकिन वह मिलता है जगत रूप में, जो अभिव्यक्ति ध्वनि संकेत के रूप में जिंदगी के अंधेरे कमरे में लगातार चक्कर लगाती थी और जानी नहीं जा रही थी, वह अंततः काव्य नायक को जग में लगातार घूमती दिख पड़ती है। यही मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष की पहचान भी है। उन्होंने कहा भी है, अपनी मुक्ति के रास्ते अकेले से नहीं मिला करते। मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट लक्षण है उसका संकटापन्न होना। परम अभिव्यक्ति के स्पष्ट प्रतिविज्ञान के क्षण में जंगली हवाएं मशाल बुझा देती हैं। ये जंगली हवाएं जंगल व्यवस्थाएं हैं, फासिस्ट वृत्तियां हैं, निहित स्वार्थ हैं। वे जगह बेजगह दृढ़ निश्चय और क्रांति के ठीक मौके पर गला घोंटती, गोली चलाती, खोपड़ी उधेड़ती या धकापेल मचाती हुई दीख पड़ती है। ये उसकी संघर्षशील आत्म आस्था और अंतर्दृष्टि को खत्म करने पर तुली हुई है। इस जंगली व्यवस्था को यह कतई पसंद नहीं है कि कोई उसे नंगी असलियत में देखे, उसके खिलाफ खड़ा हो या किसी को खड़ा करे। इस तरह काव्य नायक के आगे विराम, डॉट, डैश लगे रहते हैं। मुक्तिबोध के लिए काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, लेकिन संस्कृति से प्राप्त होकर ही वह अपना पुनः सृजन पुनर्परीक्षण करती है और अपने लिए मार्ग का चुनाव करती है। कविता में कवि को गांधी से एक बच्चा मिलता है, वास्तव में यह वसीयत है, परंपरा का दायित्व है, लेकिन क्रांतिदर्शी दृष्टा के पास आकर वही अपना रूपांतरण कर लेती है। गांधी के पास चुप बच्चा काव्य नायक के पास आकर चीखने लगता है, क्या यह अहिंसक क्रांति के विरुद्ध आवाज या संतोष तो नहीं है? इतना ही नहीं, वही बच्चा आगे चलकर सूरजमुखी का फूल हो जाता है और फिर बंदूक। जहाँ यह रूप परिवर्तन परिवर्तित यथार्थ की ओर इशारा करता है, वहीं इससे यह संकेत भी मिलता है कि परंपरा के प्रति तीव्र असंतोष भावी आशा का संदेश है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए संघर्ष और द्वंद्व का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि बिना इस सक्रिय द्वंद्व के क्रांति का विचार काव्य नायक को भी वहीं पहुँचा देगा जहाँ कोठरी के कार्य क्षमता से वंचित कलाकार को पहुँचा दिया गया था। लगता है मुक्तिबोध ही सकेली कविता में इतने स्तर उद्घाटित कर देना चाहते थे और इतनी बुनियादी बातें कह देना चाहते थे कि उनका तथ्य अपनी समग्रता में संपादित हो सके। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने अभिव्यक्ति के जिन औजारों का इस्तेमाल किया उससे उनकी महाप्राण काव्यात्मक परिकल्पना का पता चलता है। अंधेरे में की अवचेतनात्मक फंटैसी के बीच बीच में चेतना से परीक्षा की गई है और ये बीच के क्षण उसकी पुष्टि करने या यथार्थ बोध कराने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कलावादियों या रहस्यवादियों की अवचेतनात्मक कथाओं का अंत या तो स्वप्न की अवस्था में होता है या वे चेतना की व्यर्थता दिखलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। परंतु अंधेरे में की अवचेतना कथा, जैसा कहा गया है, अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, अतः वह वस्तु जगत की गहराई में प्रवेश करती है। दार्शनिक संयमी की तरह या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृत संयमी, तो जो अंतः सत्य आम लोगों की दृष्टि से ओझल होता है या जिस विषय में वे सुप्त रहते हैं उसमें एक सर्जक सचेत रहता है और इस तरह अपना सृजनात्मक दायित्व निभाता है, जो संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदन उसे प्राप्त है। सब सोए हुए हैं लेकिन मैं जाग कर देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। पहली बार जब प्रोसेशन देखकर काव्य नायक जाग पड़ता है, तब वास्तव में वह बाह्य यथार्थ का विश्लेषण करता है और पाता है कि यह सब कुछ सच था। इससे पाठक के आगे स्वप्न की व्यवस्था और प्रक्रिया को समझने का रास्ता खुल जाता है और वह फैंटेसी के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो उठता है। कविता के अंत में भी जब काव्य नायक पूरी तरह जागकर सत्य के संपूर्ण आलोक का साक्षात्कार करता है तो प्रतीत होता है कि वह अवचेतन की क्रीड़ा या वहम नहीं है, दृश्य जगत की तहों के नीचे छिपा सच्चा यथार्थ है। मुक्तिबोध के काव्य में जनविश्वास बार बार प्रकट हुआ है। यह जनक्रांति की सच्ची समझ का नतीजा है। अंधेरे में कविता में लोगों का उत्साह, उनकी सक्रियता और शक्ति को कलाकार अपने से ही बड़ा मानता है। जितना मैं लोगों की पात को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ, अकेले पश्चातपद हूँ। हालांकि जनसंघर्ष के मूल में चिंतकों, बुद्धिजीवियों और रचनाकारों का मस्तिष्क होता है, लेकिन सक्रिय जनचेतना के बिना यह क्रांति अपनी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती। यह जनचेतना की सक्रियता संपूर्ण विचारों और प्रेरणाओं को जज्ब कर अपनी क्रियाशक्ति के कारण उससे भी आगे निकल जाती है। जनशक्ति के प्रति कवि की श्रद्धा और आस्था के लोगों ने कलाकार की बुर्जवा मनोवृत्ति, आत्महीनता आदि की संज्ञाएं दी है। शायद उनकी निरी बौद्धिकता और सतही समझ को कवि के जनविश्वास से सदमा पहुंचा हो। लिप्शित्ज ने लेनिनिस्ट क्रिटिसिज्म में कहा है कि मार्क्सवाद भी दो तरह का होता है, एक रूढ़िवादी और दूसरा संप्रदाय के बंधनों से मुक्त। उसने ठीक ही कहा है। निबंध समाप्त।